नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरे, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल सम्मेलन के पहले दिन श्री शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करना, निवेश बढ़ाना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। वे कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद अमरीका दौरे में श्रीमती सीतारामन शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। ये यात्रा अगले महीने की 2 तारीख को संपन्न होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
हमारा आर्थिक सहयोग व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
मिजोरम विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। 2 दिन के सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधायी और सरकारी कामकाज पर चर्चा होगी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में आज 10 वर्ष पूरे कर रहा है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ UPI देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। UPI अब भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में भी डिजिटल भुगतान का माध्यम बन रहा है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कम्बोडिया, ग्रीस और मालदीव शामिल हैं। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम और मध्य महाराष्ट्र में भी आज अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।